यह है 10.91 का अध्यक्ष प्रभाव द्वारा करता है। आज सर्वशक्तिमान बाप दादा अपने सर्व बच्चों की विशेष शक्तियों को देख रहे हैं। सर्वशक्तिवान बाप नहीं, सर्वशक्तिवान बाप दादा तो सुप्रीम सोल आत्माओं का पिता, सर्व आत्माओं का पिता और क्या है बाप दादा, दो आत्माएं डबल इंजन। तो सर्वशक्तिवान बाप दादा अपने सब बच्चों की विशेष शक्तियों को देख रहे हैं। साधारण शक्तियों को नहीं देख रहे हैं, विशेष शक्तियों को देख रहे हैं। आज के विश्व में विशेष तीन शक्तियां, एक धर्म सत्ता, दूसरी राज्य सत्ता और तीसरी विज्ञान की सत्ता। तो धर्म सत्ता बेहद के ब्राह्मणों के दृष्टि में है धारणाओं की सत्ता, जो धर्म की धारणाएं धारण की जाती है उनकी सत्ता। और दूसरी सत्ता है ब्राह्मणों की दुनिया में राज्य सत्ता, इसके ऊपर राज्य ब्राह्मणों को कोई दूसरे के ऊपर राज्य नहीं करना है, अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य सत्ता। जितना अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त की उतना ही विश्व के ऊपर भी विजय आत्मनिर्भर मिलती जाती। तो ब्राह्मणों के विश्व में भी दूसरी सत्ता हुई राज्य सत्ता, अपनी कर्मेंद्रियों की कंट्रोलिंग पावर, उसके साथ साथ मन के ऊपर भी कंट्रोलिंग और तीसरी विज्ञान की सत्ता। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान तो पता ही है जो ईश्वर से जानकारी मिलती है डायरेक्ट, वो है ज्ञान। और विज्ञान क्या, वी माने विशेष, ज्ञान माने ज्ञान। ब्राह्मणों की दुनिया में विज्ञान क्या है, विशेष ज्ञान क्या है, विशेष ज्ञान है क्या, मन मना बाबा योग, विशेष ज्ञान हुआ योग याद। तो विज्ञान की सत्ता मन बुद्धि को एकाग्र करने की शक्ति। तो आज के विश्व में भी ये तीन शक्तियां, ब्राह्मणों की दुनिया में भी यही तीन विशेष शक्तियां हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं ने चार सत्ताएं बताई, वो कौन कौन सी? पहली तीन तीन सत्ताएं तो है ही है, साथ साथ चौथी सत्ता है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। दुनिया वाले उसके कर्म अकर्म और विकर्म की गति को नहीं जानते। न जानने के कारण विकर्म भी करते। श्रेष्ठ कर्म क्या होते हैं इसका तो ज्ञान ही नहीं, इसलिए श्रेष्ठ कर्म करने का प्रश्न नहीं है। जो भी करते हैं विकर्म ही करते। तो हम ब्राह्मणों को ये ज्ञान मिला है परमात्मा से कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। तो ब्राह्मणों की दुनिया चौथी सत्ता है शेष कर्मों की सत्ता। आज के विश्व में इस चौथी सत्ता की कमी है, इसको ही कहा जाता है शेष चरित्र की सत्ता। शेष चरित्र क्या है, भ्रष्ट चरित्र क्या है, ये ज्ञान भी श्रेष्ठ और भ्रष्ट का ज्ञान परमात्मा आकर के देता है। तो जो श्रेष्ठ कर्म ज्ञान युक्त कर्म परमात्मा की याद में रहने वाले रह करके किए हुए कर्म वही श्रेष्ठ कर्म, और उन कर्म करने कर्मों को करने वाला श्रेष्ठ चरित्रवान कहा जाता है। तो चौथी ब्राह्मणों की दुनिया की सत्ता है चरित्र, श्रेष्ठ चरित्र की सत्ता। इन चार सत्ताओं द्वारा आप ब्राह्मण आत्माएं अपना और विश्व का कल्याण कर रहे हो, अच्छी तरह से जानते हो कि चारों ही सत्ताएं हमारे में हैं, चारों ही हैं, बस सिर्फ एक धर्म की सत्ता है। ज्ञान को धारण करना वो भी धर्म सत्ता, दिव्य गुणों को धारण करना और कराना ये भी धर्म सत्ता। तो सिर्फ एक ही धर्म सत्ता है या चारों ही सत्ताएं हैं? अच्छा, धर्म सत्ता अर्थात सदा श्रेष्ठ सुखी, अल्पकाल का सुखी नहीं, सदा। और सुखी भी कोई रजो प्रधान सुख नहीं, तमो प्रधान सुख नहीं, यह सतो सामान्य सुख नहीं, श्रेष्ठ सुख सतो प्रधान। उसमें जीवन जीने की कला, उसको कहेंगे कौन सी सत्ता, धर्म सत्ता। अगर दुख नुमन जीवन है, अपने दुखों का ही अंदर अंदर मंथन चलता रहता, बाका से वर्णन चलता रहता, उसको श्रेष्ठ धर्म सत्ता नहीं देना। अपने अंदर देखना है ये श्रेष्ठ धर्म सत्ता अर्थात सदा श्रेष्ठ सुखी कुछ नमन जीवन जीने की कला आती है, इसको ही धर्म अर्थात धारणा कहा जाता है। राज्य सत्ता अर्थात अपने को और राज्य को अर्थात अपने कर्म साथियों को, राज्य को अर्थात अपने कर्म साथियों को अपने स्नेह और शक्ति के बैलेंस द्वारा सर्व प्राप्ति संतुष्टता का अधिकार दाता बन अनुभव करें। धर्म सत्ता तो समझी, राज्य सत्ता किसे बताया? तो राज्य सत्ता अर्थात अपने जो कर्म के साथी है, जो भी हमको एम ऑब्जेक्ट जीवन में मिला हुआ है, उस एम ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए जो हम कर्म कर रहे हैं, उस कर्म करने में जो हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, उन सहयोगियों को संतुष्टता के द्वारा, शक्ति के बैलेंस द्वारा सब प्राप्तियों का अनुभव कराना, ये क्या हुई राज्यसत्ता। राजा अर्थात दाता, हर संपत्त वाली आत्मा को प्राप्ति की अनुभूति होना, यही राजा का श्रेष्ठ कार्य है। संबंध में आने वाली आत्माओं को नहीं, लेकिन संपर्क में भी आने वाली आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति होना, यही राजा का श्रेष्ठ कार्य है। हर एक द्वारा संतुष्टता की वाह वाह, यह है यथार्थ राज्य सत्ता। तो राज्य सत्ता अर्थात स्वयं को चलने की औरों को चलाने की कला, सहयोग लेना और दूसरों को सहयोग देने की कला, विज्ञान की सत्ता अर्थात विज्ञान द्वारा, साधनों द्वारा प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने की कला, श्रेष्ठ कर्म की सत्ता अर्थात कर्म का वर्तमान फल खुशी और शक्ति अनुभव करना, जिस कर्म से वर्तमान में ही अगर खुशी अनुभव नहीं होती है तो वो श्रेष्ठ कर्म नहीं हो सकता। और जिस कर्म से अशक्ति अनुभव हो उस कर्म को भी श्रेष्ठ कर्म नहीं कहेंगे। वाचा अथवा कर्मेंद्रियों से जो कर्म किए जाते हैं उनके द्वारा भी हमको खुशी की और शक्ति की अनुभूति होनी चाहिए, अगर होती है तो कहेंगे श्रेष्ठ कर्म की सत्ता हमको मिली हुई। और साथ साथ भविष्य पर जमा होने की अनुभूति भी होना, सिर्फ हमारा लक्ष्य एम ऑब्जेक्ट इस जन्म की प्राप्ति करने नहीं है, लेकिन 21 जन्मों का भी प्राप्ति का हमारा लक्ष्य है। तो भविष्य के साथ साथ वर्तमान में भी प्राप्ति का अनुभव हो, खुशी का अनुभव हो, शक्ति का अनुभव हो, उसको कहेंगे श्रेष्ठ कर्म की सत्ता। कर्म के खजानों की संपन्नता के नशे की कला, इसको कहें। तो अब सोचो ये चारों कलाएं आपके जीवन में है। सबसे बड़ा खजाना श्रेष्ठ कर्मों का खजाना है। क्यों? क्योंकि संग में वही एक ऐसा युग है जिसमें परमात्मा स्वयं आकर के श्रेष्ठ कर्म कैसे किए जाते हैं ये तरीका बताकर, और किसी युग में परमात्मा आकर के नहीं बताता। मनुष्य बताते हैं लेकिन मनुष्य खुद ही पतन और मुखी, तो वो कर्म करना भी कैसे सिखाएंगे। कि दुनिया का पतन हो और उनका खुद भी पतन हो जाए। एक परमात्मा ही ऐसा है जो हमको श्रेष्ठ कर्मों की बुद्धि गति सिखाता है। तो सबसे बड़ा खजाना श्रेष्ठ कर्मों का खजाना है। अगर श्रेष्ठ कर्मों का खजाना जीवन में नहीं है तो मानव जीवन अमूल्य जीवन नहीं। लेकिन पशु समान जीवन। आप सभी किस अथॉरिटी से विश्व के आगे चैलेंज करते हो कि जीवन जीना सीखना हो तो यहाँ आकर के ये चैलेंज करते हो ना? देवताओं ने जो जीवन जिया उसकी यादगार मंदिरों में आज भी बनी हुई है। उन यादगार मंदिरों में उन देवताओं के चित्र का चित्रण किया गया है, चित्रों मूर्तियों में, और उनकी आज तक पूजा होती चली आ रही है। कर्म इंद्रिय से जो जो कर्म किए हैं उन कर्मों की पूजा होती चली आ रही है। तो सब नंबर वार, लेकिन पशु और देवता, पशु के समान जीवन, पशु के समान कर्म और देवताओं का कर्म, इसमें बहुत अंतर। तो ये चैलेंज करते हो ना? राजनेता हो चाहे विज्ञानी नेता हो, चाहे धर्म नेता हो, सबके आगे रूहानी सपूत से कहते हो, बेफिक्र बादशाह बन के देखो। बादशाह हो ना? आज की दुनिया के राजनेता बेफिक्र नहीं हो सकते, विज्ञानी नेता भी बेफिक्र नहीं हो सकते, चाहे धर्म नेता हूं वो भी फिक्र से फारिग नहीं हो सकते। उनको कोई ना कोई फिक्र लगी जरूर हुई है, लेकिन तुम ब्राह्मण बच्चे सबके आगे रूहानी सपूत से कहते हो कि यहां आकर के सीखो। क्या बेफिक्र बादशाह कैसे बनना? तुम खुद बादशाह हो ना? जीवन का यथार्थ आनंद अनुभव कर रहे हो, कर रहे हो ना? सबसे बड़ा खजाना किसके पास है? हमारे पास। अथॉरिटी से कहते हो ना? क्योंकि दुनिया में तीन सत्ताएं और आपके पास चार सत्ताएं। चौथी सत्ता कौन सी ज्यादा है? श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। जो श्रेष्ठ कर्म करने की कला आप ही जानते हो, दुनिया नहीं जानती। और चारों ही सत्ताओं का बैलेंस यही बाप समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति है। तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? कौन सा वर्ष है तपस्या वर्ष? 91। इन चार सत्ताओं को चेक करना, चारों ही सत्ताओं के आधार से एक रस स्थिति का आसन सदा अचल अडोल रहेगा। तपस्या सदैव आसन पर करते हैं। तो ये चार सत्ताओं रूपी चार पांव एक स्थिति के आसन को मजबूत करेंगे। हर समय बेफिक्र बात का अनुभव कराएंगे। बादशाह अर्थात अधिकारी और प्रजा अर्थात आधी प्रजापति को आधी रहना पड़ता है। तो आप बेफिक्र बात का बेफिक्र प्रजा नहीं हो, क्यों? प्रजा तो वो होता है जिसको जिसके लिए बताया प्रभा प्रजा मन प्रभावित। किससे प्रभावित? राजा होगा तो प्रभावित होगी और राजा की जैसी स्थिति होगी प्रजा की भी वैसी स्थिति होगी। तो प्रजा हो गई अधीन किसके? राजा। तो प्रजा बेफिक्र नहीं कही जा सकती क्योंकि वो तो आधीन है। तो बेफिक्र प्रजा नहीं हो आप, बेफिक्र बादशाह। क्योंकि जो राजा होता है उसका कोई आधार आधार नहीं होता, वो किसी के अधीन नहीं होता। राजयोगी प्रजा योगी नहीं होता। आज की सत्ताधीश क्या है? प्रजा योगी। प्राप्ति किससे करना है उनको? प्रजा। और आप देहली के राजा संगे में कोई स्थूल राजा की तो बात है ही नहीं। यहाँ तो हम सब सेवाधारी, यहाँ राजा की तो ऊपर करनी है अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर। तो आप कर्मेंद्रियों की जो प्रजा है उस प्रजा के योगी नहीं हो, प्रजा के अधीन आधीन नहीं हो। बेफिक्र बादशाही की निशानी क्या दिखाई देती है? जितना अधिकारी उतना ही कर्म के सत्कारी। सिर्फ अधिकारी नहीं, अधिकार के साथ साथ कर्म के सत्कारी। सत्मन सच्चा, कार्य मन कार्य करने वाला। तो सत्कारी यानी सर्व के सत्कारी, सर्व के प्रति सब कर्म करने वाले, श्रेष्ठ कर्म करने वाले अधिकारी की परख ही सत्कारी से होती। अगर सत्कारी नहीं तो अधिकारी नहीं। सुनाया ना कि योगी राजा की निशानी है सर्व द्वारा संतुष्टता के पुष्पों की वर्षा हो। बाहबा की जीत हो। ऐसी राज्य सत्ता प्राप्त की है, पहले अपने समीप के कर्म साथी कर्मेंद्रियों को चेक करो। कि मुझे आत्मा राजा की स्नेह और शक्ति अर्थात लव और लाभ दोनों ही सदा आर्डर में चलते हैं या कभी कभी मजबूरी से चल रहे हो या मोहब्बत से चल रहे हो? एक होता है मजबूरी से चलना, चलना ही पड़ेगा, क्या करें, आधी में बंधन में, और एक है मोहब्बत से चलना। ज्यादा शक्ति कितने है? मोहब्बत में। दिखावा मात्र है या दिल से है? दिल से होगा तो जरूर मोहब्बत होगी, अगर दिल से नहीं होगा तो सिर्फ जो भी कर्म करेंगे दूसरों को दिखाने के लिए कहेंगे करेंगे, मान सम्मान प्राप्ति की इच्छा से करेंगे, लेकिन दिल से नहीं करेंगे। ऐसे ही सारे दिन की दिनचर्या अपने कर्म संबंधी या कर्म के साथियों को देखो, उसके साथ कर्म संपर्क में आने वाली आत्माओं को देखो कि मुझे राज्य अधिकारी आत्मा द्वारा कितने परसेंट में और कितने संतुष्ट हर्षित रहे। यह है राजकर्ता की यथार्थ अनुभूति। विज्ञान की सत्ता की चेकिंग कैसे करें? हस्त का विज्ञान, हस्त के स्थूल साधनों द्वारा सुख और आराम की अनुभूति कराते। आपका विज्ञान है क्या बताया? योग की शक्ति। योग बड़े से बड़ा विज्ञान, इसमें स्थूल साधनों की जरूरत नहीं, कोई गीत आदि बजाने की भी दरकार नहीं, कोई वातावरण बनाने की भी दरकार नहीं। अगर परफेक्ट स्टेज को प्राप्त कर ले तो संगठन की भी दरकार नहीं कि प्रोग्राम बने संगठित योग का, तभी योग लगेगा, इसकी भी दरकार नहीं। हर्द का जो विज्ञान है उसमें स्थूल साधनों की और उन साधनों के द्वारा सुख आराम की अनुभूति करते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो योग बड़े से बड़ा विज्ञान, वहां साधन और यहां है साधना। इसको साधना है यदि ये मार्केट सभी हुई है, आधा हट गया गिरी, तो हमको साधना किसको है? साधने वाला कौन? मन बुद्धि रूपी आत्मा किसको साधे? किसको साधेगी? कर्म इंद्रियां जो पतनोन्मुखी है, अल्पकाल के सुखों में रमण करने आदत वाली हो गई, उनको साधना। तो आपकी है साधना, उन दुनियावी वैज्ञानिकों की है साधन के तरफ बुद्धि, और आपकी है साधनों की तरफ नहीं लेकिन साधना की तरफ। विज्ञान है योग शक्ति, आत्मा को मन और बुद्धि की साधना द्वारा कितना दूर ले जाते। हद के विज्ञानी सूर्य तक नहीं पहुंच सके, फिर कहां तक पहुंच सके? चंद्रमा तक पहुंच सके। सिर्फ चंद्रमा तक उनकी पहुंच ली, दूरी तक भी नहीं पहुंच सके। कौन? हद के विज्ञानी। कौन की दुनिया के? दुनिया भी तो तीन हो गई। बाहर की दुनिया में अखबारों में भी कहते हैं तीन दुनिया है। तो हम ब्राह्मणों की दृष्टि में भी तीन दुनिया स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। एक तो दुनिया है 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं की दुनिया, दूसरी दुनिया है उन ब्राह्मणों की दुनिया जो 16,000 की लिस्ट में, जिनमें प्रजा भी है। तो राजाएं भी हैं, राजाएं तो नहीं, वो तो 108 की लिस्ट में आ गए, और दासियां भी हैं क्या? प्रजा भी है और दासियां भी, और राज परिवार के सदस्य भी क्या? राज घराने के, राज फैमिली भी है उसी में। तो ये दूसरी दुनिया हुई, और तीसरी दुनिया 108 जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिनको सारी दुनिया के सब धर्मों के मनुष्य मात्र जिनका स्मरण करते हैं, स्मरण करते हैं आज तक, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर धर्म की आत्माएं उन श्रेष्ठ आत्माओं को स्मरण करती हैं। तो वो ही तीसरी दुनिया, यानी बीज रूप आत्माओं की दुनिया। वो बीज रूप आत्माओं की दुनिया बाप डायरेक्ट आकर के तैयार करते हैं, क्योंकि बीज में सबसे ज्यादा ताकत होती है, पत्तों में, टहनियों में, जड़ों में, तनों में इतनी ताकत नहीं हो सकती जितनी बीज में ताकत होती। ये है सारी दुनिया के चुने हुए बीज जिनसे वो माला बनती है, जो सारे विश्व को
भव्य का विज्ञान भव्य के इन साधनों द्वारा उसको आराम किए नहीं की कराता, और आपका विज्ञान है योग। योग बड़े से बड़ा विज्ञान है, वहां उस दुनिया में है साधन विज्ञान, और यहाँ है साधन आत्मा को मन और बुद्धि की साधना द्वारा कितना दूर ले जाते, वो हद के विज्ञान में तीन तक नहीं पहुंच सके, चंद्रमा तक नहीं पहुंच कर लेंगे, और देह के विज्ञानी चंद्रमा और सूर्य के भी पार मन और बुद्धि की साधना द्वारा कितना समय पहुंचते, और खर्चा कितना लगता है। समय को कहते हैं टाइम इज मनी, स्कूल मनी तो नहीं लगती है, लेकिन टाइम की मनी भी नहीं लगती है, एक सेकंड में पहुंचा है। कितना बड़ा विज्ञान है हमारा विज्ञान, कौन सा है या वो एयर कंडीशन द्वारा सुख देते, आराम देते, और आप साधना द्वारा जब चाहो तब ठीक स्थिति का अनुभव करो, जब चाहो तब ज्वाला रूप का शक्ति रूप का अनुभव कर सकते। हर का विज्ञान थोड़े समय के लिए आराम देने के निमित्त बनता है, लेकिन आप सदा आराम में कैन की नींद में सोते, कैन से उठते हो, और कैन से सारा कार्य बेचैन होते हो क्या? जब आसन से उतर जाते हो तो बेचैन हो। आसन कौन सा? ઈશ્વર સ્થિતિ છું અને આત્મા હું પરમ પિતા પરમાત્મા થી પ્રેક્ટિકલ સંતાન. જબ દેવ હમને આ જાતે રાવણ કી સંતાન બનતે તો બેચેન હો જાય, નહીં તો બેચેની કા નામ નિશાન નહીં હૈ. વિજ્ઞાન ઓર ક્યા કરતા મનોરંજન કા સાધન દેતા ઓર આપકા મન ઉદાસ હોતા હી નહીં. મનોરંજન કા સાધન કી તો જરૂરત વહાં જહાં મન દુઃખી હોતા હો ઓર આપકો તો ઉદાસ હોને કી જરૂરત હી નહીં. ક્યો દુઃખદ કે મનોરંજન કી આવશ્યકતા હો? क्योंकि रात तब होते हो जब मन के दास बनते आत्मा का इंद्रियों के ऊपर भी कंट्रोल रहे और मन के ऊपर भी कंट्रोल रहे. अगर मन का दास बन गई आत्मा तो जरूर बेचैन हो जाएंगे, उदास किया गया. तो दास बनते हो क्या? या कभी कभी स्पेशल के लिए संस्कार आ जाते हैं? अभी तो बादशाह बन गए ना, न दास बनते न उदास होते. सीधा मन इसलिए मन सदा मौज में रहता है. एकांत में है तो भी मौज में है और संगठन में है तो भी मौज में. ऐसे नहीं कि संगठन मिला तो अवस्था उनकी तरह गई और संगठन से दूर हो गए तो अवस्था डाउन हो जाए. नहीं, हम तो हमेशा संगठन में है ही. कहाँ के वासी हो? मधुमन वासी. चाहे वहां भी रहे लेकिन हम मधुमन वासी होकर के रहे तो सदा मौजूद है. तो मधुमन है बाप का घर और बाप सदा साथ में है तो हम मधुमन वासी. सदा मौज के दाता मालिक के साथ रहते हो ना, कभी कभी भूख जाते हो. भूख न मना दूर हो जाए. तो रुकना नहीं, अगर उस रुकते रहेंगे तो सबसे दूर कौन सा धर्म हो जाता है जो परमात्मा से कोई प्राप्ति नहीं करता? कौन सा देश रूस? रूस ना. रूस ऐसा देश है जहां कम्युनिज्म नास्तिकवाद फैला हुआ है. तो परमात्मा से बहुत दूर है. परमात्मा तो क्या, वो आत्मा को भी वहां राजा ही को पसंद ही नहीं करते क्योंकि परमात्मा का वर्षा ही क्या है? राजा ही. तो रुकना नहीं, सब धर्म की आत्मा परमात्मा से प्राप्ति कर जाती है. हर धर्म में राजा ही चलिए, लेकिन लेनिन के द्वारा स्थापन किए हुए कम्युनिस्ट में राजा ही को नहीं मानते. तो पूछा कभी रूठ जाते हो? रूठना नहीं, मन अथवा मुंह को फेर नहीं देना। मन को फेर दिया तो मुख भी फिर जाएगी, और जब मुख फिर गया तो जरूर बुद्धि भी फिर जाएगी, तो विपरीत बुद्धि जनसंख्या हो जाए। तो ऐसे चेक करो कि विज्ञान की सत्ता कहाँ तक अभिनाशी रहती है, विज्ञान मन या लगन। तो लगन की सत्ता कहाँ तक अभिनाशी रहती है, लगन में कहाँ तक मगन रहते हो, अविनाशी रहती है या खंडित होती रहती है? ऐसे ही धर्म की सत्ता, धर्म अर्थात श्रेष्ठ जीवन की कला, श्रेष्ठ जीवन जीने की कला, धारणा ही धर्म है। आप सब तो धर्म आत्माएं भी हो और श्रेष्ठ कर्म आत्माएं भी हो, तो ये चेक करो कि ब्राह्मण जीवन जी रहे हैं, शूद्र जीवन है भ्रष्ट कर्म वाला, और ब्राह्मण जीवन है श्रेष्ठ कर्म वाला। ब्राह्मण जीवन में अर्थात सदा निर्विकल्प, निर्विघ्न, निर्विकल्पी, सदा निरंकारी, निराकारी, सोचाकारी। ऐसे नहीं कि शरीर छोड़ जाने के बाद ही ये इतनी तेज बनेगी। तो सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा को फॉलो करने लग गए, नहीं, साकार स्वरूप में रहते हुए साकार शरीर के द्वारा ही ऐसी निर्विकल्प, निर्विघ्न, निर्विकर्मी और निराकारी चेत को हम अनुभव करते हैं, इसको कहते हैं ब्रह्म जीवन। अगर संकल्प विकल्प आते रहते, रोकने से भी रुकते नहीं, तो ब्रह्म जीवन नहीं। विघ्न आते रहते हैं और विघ्नों को भगाने में चैन बैठ होता रहता है, तो ब्रह्म जीवन नहीं। कोई भी कर्म करने के लिए बुद्धि में आता है कि विकर्म है, फिर भी पूर्ण जन्म के संस्कारों के अनुसार वो विकर्म कर लेते, बुद्धि ज्ञान में नहीं चलती, मन के वशीभूत हो जाती, और मन तो संकल्पों का घोड़ा है, लगाम नहीं लगाएंगे तो गड्ढे में ले जाता, तो जरूर शुद्ध है। क्यों? तो बुद्धि में ज्ञान धारण नहीं है। जो ब्राह्मण होते हैं वो तो जनेऊ धारण किए रहते हैं हमेशा, कभी यज्ञों कभी तो उतारते हैं क्या? यज्ञों कभी तो है तीन सूत्रों को धारण करना, कौन से तीन सूत्र? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा ना, कैसे होता है, कब होता है, कौन करता है, कौन निमित्त बनते हैं? जो सारा ज्ञान अगर बुद्धि में रहता है, ऐसे ज्ञान को धारणा करने वाली श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं कभी विकल कर नहीं सकती। ऐसी निराकारी स्टेज में आत्माएं जरूर रहेंगे, निराकारी स्टेज मन निसंकल्प स्टेज, और ऐसी निराकारी स्टेज कोई शरीर छोड़ने के बाद नहीं, लेकिन शरीर में रहते हुए ही, इसको कहा जाता है जीने की कला, जहाँ कोई हद की इच्छा नहीं। क्या इस हद की दुनिया की प्राप्ति की कोई भी इच्छा नहीं? हद के वैभव मिल जाए, हद के संपर्क और संबंधी मिल जाए जो हमको मदद करें, किसी भी प्रकार की कोई
हर भी इच्छा नहीं, इस जन्म की प्राप्ति के लिए कोई भी इच्छा नहीं, कोई अप्राप्ति नहीं। तो सदा ये गीत गाते रहो, पाना था तो पा लिया। पाना था तो पा लिया, क्या पा लिया? क्या पा लिया? हाँ, बाप मिला सब कुछ, बाप माना बीज। जब शक्ति का बीज हिंद गया, मुट्ठी में आ गया, तो सारी शक्ति की शक्ति तो मुट्ठी में आ ही गई। तो शक्ति का बीज कौन है? बाप। बाप तो दो है, बाप तो दो है, बेहद के हद के बाप को तो पाने का है मापदंड नहीं, उसके तो बच्चे बने ही थे। बेहद के बाप भी दो है, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्य सृष्टि का पिता। तो आत्माओं का बाप बिंदु वो तो इब्राहिम बुद्ध साहित्य भी पाए लेते हैं, लेकिन उन्हें स्वर्ग का वर्षा नहीं मिलता। और हमने किस बात को पाया? साकार तो निराकार, क्या सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेद है, इतना तो भक्ति मार्ग के लोग भी जानते कि साकार और निराकार में हमारे लिए कोई भेद नहीं। ये भेद करना किसका काम है? ये धर्मियों का, उनकी बुद्धि में ये प्रश्न चलता रहेगा, साकार है कि निराकार है, ये निराकार बोल रहा है कि साकार बोल रहा है, ये कर्म साकार कर रहा है कि निराकार कर रहा है। न करण हार को देखेंगे, न करावन हार को देखेंगे, घोटाला चलता रहेगा बुद्धि में। तो पाना था तो पा लिया, क्या पा लिया? बाप को पा लिया। ऐसे नहीं सिर्फ साकार को पा लिया, साकार शक्ति के बाप को पा लिया, नहीं, साकार शक्ति के बाप में निराकार ज्योति बिंदु तो है ही। अगर निराकार ज्योति बिंदु न होता तो वो साकार बाप पहचानने भी नहीं आता। तो इसको कहा जाता है धर्म सत्ता, धारणाओं की सत्ता, जो पाना था तो पा लिया। ये गीत सदा बुद्धि में चलता रहे। अब सोचो चारों ही सत्ताएं हैं, चारों ही पांव एक रस हैं, या एक रस की बजाय एक छोटा पांव और एक बड़ा पांव है? चारों पांव एक रस होंगे, चारों ही सत्ताओं में एक रस होंगे तो अचल होंगे, नहीं तो हलचल होती रहेगी। तो सुना क्या देख रहे थे? हर एक बच्चे में चारों सत्ताएं कहाँ तक जमा है? खुशी से जीने वाले हो ना, मजबूरी से जी रहे हैं, मजबूरी से चल रहे हैं, क्या करें, हमको चलना ही है। ब्राह्मण बन करके भी, बाप के बन करके भी, बाप के कार्य में फुल सरेंडर होकर के भी, ऐसे विचार तो नहीं चल रहे हैं, कैसे? मजबूरी से चल रहे हैं, खुशी से नहीं चल रहे हैं। जैसे जेल के कैदी हो गए, क्या करें, हम तो बंद गए, हाथ हथकड़ी पांव बेड़ी पड़ गई, चल रहे हैं, अरे हमको चलना ही है। तो चलना ही है, ये हो गई मजबूरी। तो खुशी खुशी से चलना नहीं कहा जाता। तो पूछा, खुशी से जीने वाले हो, क्या मजबूरी से चलना, मजबूरी से जीना, किसी को जीना कहते हैं? कभी मरता है, कभी जीता है, कभी सांस रुक जाता है, कभी ढीला हो जाता है,
कभी तेज हो जाता है तो ये कोई जीना नहीं। जीना क्या है? एक रस चलना, खुशी खुशी में चलना। अच्छा, कोई बहन का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो ब्रैकेट में लिखा है कोई बहन को कुछ तकलीफ हुई, बोला सेकंड में फुल स्टॉप लगाना आता है, जो बीती तो बीती, अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे कि फुल स्टॉप लगाने में टाइम लगता है। बीती तो बीती फुल स्टॉप, क्या फुल स्टॉप लगने के बाद फिर कहीं आगे कदम उसी रास्ते में न बढ़ पड़े? किस रास्ते में? वही जो अभी बताया, मजबूरी। तो फुल स्टॉप यही है विज्ञान। क्या ज्ञान के विपरीत संकल्प जहां भी चले, जो बाप का संकल्प हो बच्चों का संकल्प, अगर बाप के संकल्प के विपरीत संकल्प चलता है तो उसको तुरंत फुल स्टॉप। यही है विज्ञान। विज्ञान भी इस चीज को मिटाए देता है ना। बेहद के विज्ञान की सत्ता। सेकंड में बिंदी लगाती, तो विज्ञान की सत्ता अर्थात फुल स्टॉप लगाना, इसके लिए ही तपस्या का गोल्डन चांस मिला है। कौन सी तपस्या का? चौदह वर्ष की तपस्या का गोल्डन चांस मिला है। हाँ, ये चल रहा है तपस्या वर्ष। इस तपस्या वर्ष का गोल्डन चांस मिला है क्योंकि फाइनल पेपर में चार और पांच तत्व प्रकृति के और पांच विकार सभी मिलकर के हलचल में लाने का प्रयत्न करेंगे। तपस्या वर्ष में नहीं, ये तो मिला है गोल्डन चांस। ये चांस नहीं लिया तो इस गोल्डन चांस के बाद रावण के दसों सिर, क्या पांच स्त्री मुख और पांच पुरुष मुख, पांच विकार और पांच तत्व, ये दसों मिलकर के फुल फोर्स से अपना वार करेंगे। हलचल में लाने का प्रयत्न करेंगे। अति हलचल में सेकंड में अचल रहने वाले ही पांच विदानर बनेंगे। बाकी सब है पांच विदानर न होना, उसको फेल थोड़े कहा जाता है। पांच विदानर माना वो तो फर्स्ट क्लास से भी ऊपर हो गए। हाँ, सेक्शन मार्क से पास होना तो उसे फेल नहीं कहा जाता। उसके बाद आते हैं फर्स्ट क्लास, तो फिर उसके बाद आते हैं सेकंड क्लास, कितने हाँ, फिर कहीं फेलियर होंगे है? तो अति हलचल में सेकंड में अचल रहने वाले ही पास विदानर बनेंगे। ऐसे नहीं समझना कि लास्ट में एकांत में बैठ करके पेपर देना है। क्या अति हलचल में अति अचल, यह है पेपर, यही क्वेश्चन आवेगा, इसलिए अभी से अभ्यास करो। बाहर की हलचल मन को हलचल में न लाए। क्या कोई भी बाहर की हलचल हो उससे मन हलचल में ना आ जाए, इसको ही कहा जाता है विजयी रतन। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ धर्म सत्ता वाली धर्म आत्माओं को देह के विज्ञान सत्ता वाले साधना स्वरूप आत्माओं को, साधन स्वरूप आत्माओं को नहीं कहा, साधना स्वरूप आत्माओं को, राज्य सत्ता वाले स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, श्रेष्ठ कर्म सत्ता वाले कर्म योगी आत्माओं को, बाप दादा का, बेफिकर बाप साहब बनाने वाले बाप का, इसका किसका, बाप दादा कंबाइंड का, और बेफिकर बाप साहब बनाने वाले बाप का याद प्यार और नमन। अच्छा, आज टीचर्स ने भी त्याग किया, क्या था, क्या किया होगा, आज किया त्याग, इससे पहले नहीं किया होगा, खास उस दिन के लिए बोला, क्या क्या किया होगा, क्या क्या किया होगा, टीचर पीछे बैठी, वो पीछे का मतलब थोड़ा ही है, रहे सुने, तो त्याग के भाग्य स्वरूप में विशेष याद क्या सीखा, जो खुद पीछे हो जाए दूसरों को आगे करे, ऐसे बच्चों से विशेष बाप दादा याद क्या देने का उपक्रम करते हैं खास, और जो खुद आगे होता है दूसरों को पीछे करे, हैं? आगे निकल गया, लेकिन दूसरों को आगे बढ़ाने वाला ही यहाँ आगे जाता है, जो खुद आगे रहने की पेश में रहता है दूसरों को तंगी लगा देता है। कितने वर्ष हो गए टीचर को, तो टीचर की आगे बैठती रहे, तो जब अव्यक्त बाप दादा इतने वर्षों से बोल रहे हैं कि अब मैं किसके लिए आता हूँ, नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए, नए बच्चों के लिए आता हूँ, तो जब नए बच्चों के लिए आता हूँ बोल दिया, तो ये इशारा ही काफी है कि पुरानों को पीछे आगे बैठा चाहिए, है दूसरों को आगे चांस देना चाहिए, है तो त्याग के भाग्य स्वरूप में याद प्यार विशेष स्वीकार हो, टीचर्स का काम ही है औरों को आगे बढ़ाना, नाम रूप धाम कर्तव्य, तो परमात्मा का नाम रूप धाम कर्तव्य गिनाया जाता है, वैसे टीचर्स का काम क्या बताया, औरों को आगे बढ़ाना है, यही टीचर्स का कर्तव्य, यही उनका धंधा है, क्योंकि बाप ने टीचर्स को आगे किया तो टीचर्स और उनको आगे बढ़ाए, अच्छा किया, प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया, इसकी टीचर्स को मुबारक, अच्छा, डबल विदेशियों के भी पत्र और कार्ड बहुत आए, पत्र लिखने में और ग्रीटिंग कार्ड भेजने में विदेशी बहुत पीछे गए, देश वालों के भी कार्ड और पत्र बहुत आए हैं, ऐसे नहीं उनके नहीं आए हैं, उनके भी आए हैं, कार्ड कहाँ रखे हैं, कार्ड कहाँ रखे हैं, देशियों के कार्ड और विदेशियों के भी आए हुए कार्ड कहाँ रखे हैं, बाप की दिल की डिब्बी में, संभाल कर रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं? डिब्बी में संभाल कर रखे हुए हैं, जिन्होंने भी नए वर्ष की विशेष यादगार भेजी है। उन्होंने सहित सभी बच्चों को नए वर्ष के हर समय की नवीनता की मुबारक मुबारक हो। अब विश्व में एक एग्जाम्पल बनकर के दिखाओ कि कर्मयोगी स्थिति की क्या कमाल होती है। जो एग्जाम्पल बनता है ड्रामा में एग्जाम के टाइम, उसे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं।